आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वर रूम में अचानक से आग लग जाती है
और सब कुछ जल रहा है।
हाँ बिल्कुल, हार्ड ड्राइव जल गई, मशीनें पिघल गईं, मतलब बाहर से देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि सारा सिस्टम और डेटा हमेशा के लिए खत्म हो गया है।
जाहिर सी बात है, भौतिक नुकसान तो बहुत बड़ा है,
लेकिन अगर उस सिस्टम का आर्किटेक्चर और उसका सारा डेटा क्लाउड पर बैकअप किया हुआ था तो असल में नुकसान सिर्फ प्लास्टिक और लोहे का हुआ है, जानकारी तो पूरी तरह से सुरक्षित है।
सही कहा, हार्डवेयर नष्ट हो सकता है लेकिन डेटा और उसे प्रोसेस करने का जो तरीका है ना, वो किसी और रूप में जीवित रहता है। हम अक्सर उस बाहरी ढांचे को ही असली चीज मान लेते हैं जिसके अंदर जानकारी रखी होती है।
और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय भी इसी विचार के इर्द गिर्द घूमता है। हम इतिहास स्पीक्स के दूसरे एपिसोड और कंचन कलश के लिए तैयार किए गए नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं।
बिल्कुल, और इसमें हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी
जी
नालंदा के इतिहास और उसके विध्वंस की बात कर रहे हैं।
हाँ, हमारा मकसद ये समझना है कि जब कोई इतना महान संस्थान नष्ट होता है तो क्या उसका ज्ञान भी राख हो जाता है, और आज 2026 में टूटते संस्थानों के दौर में ये घटना हमें क्या सिखाती है।
अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो नालंदा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, मतलब वो दुनिया भर के ज्ञान का एक जीवंत केंद्र थी।
हाँ, जहाँ कोरिया, जापान, चीन और तिब्बत से भी छात्र आते थे।
बिल्कुल
ठीक है, इसे समझते हैं। स्रोतों के अनुसार जब 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया तो वहाँ की मशहूर लाइब्रेरी धर्मगुंज को जला दिया गया,
जो कि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी।
बहुत बड़ी, कहा जाता है कि वहाँ 90 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां थीं जो महीनों तक सुलगती रहीं। मैं सोच रही थी कि जब सब कुछ जल रहा था तो उन विद्वानों ने ज्ञान को कैसे सहेजा।
ये एक बहुत ही अहम सवाल है।
मेरा मतलब है, रातों रात 90 लाख किताबें अपनी पीठ पर लादकर तो भाग नहीं सकते ना।
मैं बताता हूँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने कागज को बचाने की कोशिश ही नहीं की।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। प्राचीन भारत में श्रुति और स्मृति की एक बहुत ही गहरी परंपरा रही है,
मतलब सुनकर और याद करके सहेजने की परंपरा।
बिल्कुल सही। नालंदा के विद्वानों ने बौद्ध दर्शन, खगोल विज्ञान और गणित के कई अहम ग्रंथों को शब्दशः कंठस्थ किया हुआ था।
मेमोराइज कर लिया था।
हाँ, तो जब वे तिब्बत, नेपाल और एशिया के अन्य हिस्सों की तरफ भागे तो वे अपने साथ भारी किताबें नहीं बल्कि अपने दिमाग में पूरा का पूरा डेटाबेस लेके गए।
पर रुकिए एक मिनट, इंसानी याददाश्त तो बहुत कमजोर होती है ना, समय के साथ चीजें भूल जाती हैं या बदल जाती हैं। दशकों का शोध और जटिल गणितीय सूत्र सिर्फ मौखिक रूप से कैसे इतने सटीक बचे रह सकते हैं।
ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं था।
तो क्या ये ग्रुप एफर्ट था?
बिल्कुल, ये एक पूरी कम्युनिटी का साझा प्रयास था। नालंदा में ज्ञान को सिर्फ रटा नहीं जाता था बल्कि उस पर गहरी बहस होती थी, डिबेट्स होती थी।
ओहो, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम था।
हाँ, जब ये विद्वान नई जगहों पर पहुंचे तो उन्होंने केवल पुराने श्लोक नहीं दोहराए बल्कि उन्होंने उस पूरे इकोसिस्टम को दोबारा खड़ा कर दिया,
जहां सवालों और तर्कों के जरिए ज्ञान को फिर से जीवित और प्रमाणित किया जा सके।
एकदम सही। उन्होंने जो बचाया वो केवल डेटा नहीं था बल्कि उस डेटा को प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर था।
यहां एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है, अगर हम इस ऐतिहासिक घटना को आज यानी 2026 की स्थिति से जोड़कर देखें।
हाँ, आज का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है।
आज के दौर में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान खतरे में हैं या बिखर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास जो ज्ञान है वो नालंदा के स्कॉलर्स की तरह हमारे दिमाग में नहीं है,
वो सर्वर्स और डेटा सेंटर्स में है।
बिल्कुल, अगर 2026 में कोई बड़ा साइबर अटैक हो जाए और डिजिटल संस्थान गिर जाएं, तो क्या हम सच में उस ज्ञान को बचा पाएंगे?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो 2026 में टूटते संस्थानों का डर हमें नालंदा से ये सीखने को मजबूर करता है कि असली संस्थान ईंटगारे, सर्वर रूम या किसी आधिकारिक नाम से नहीं बनते।
तो फिर किससे बनते हैं?
वे उन लोगों से बनते हैं जो उस सिस्टम को चलाना जानते हैं। अगर कल को सारे डेटा सेंटर्स क्रैश हो जाएं, तो भी वो इंजीनियर, वैज्ञानिक और विचारक मौजूद रहेंगे जिन्हें पता है कि उस तकनीक को दोबारा कैसे बनाना है।
यानी सर्वर सिर्फ एक हार्डवेयर है और असली क्लाउड तो वो इंसानी नेटवर्क है जो उस ज्ञान को भस्म समझता है।
बहुत सही उपमा दी आपने। जब कोई ढांचा गिरता है तो उसके लोग उस ज्ञान के बीज को किसी नई जगह बो देते हैं। विनाश केवल भौतिक चीजों का होता है,
क्योंकि विचारों को दीवारों या सिलिकॉन चिप्स में कैद नहीं किया जा सकता। ज्ञान का प्रवाह हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है।
बिल्कुल सही।
तो इन सब का क्या मतलब है? नालंदा की राख से लेकर 2026 की तकनीकी और संस्थागत चुनौतियों तक श्रोतों से हमें यही स्पष्ट रूप से समझ आता है कि ज्ञान अमर रहता है।
हाँ, इमारतें गिर सकती हैं, सर्वर डाउन हो सकते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग और ज्ञान को आगे बढ़ाने की जो इच्छा है वो कभी राख नहीं होती।
इंसान का साझा अनुभव और उसकी बुद्धिमत्ता ही वो असली सुरक्षा कवच है जो किसी भी बाहरी हमले से कभी पूरी तरह क्रैश नहीं होता।
एकदम 100% की बात कही।
तो सोचने वाली बात ये है कि अगर भविष्य में आज की सबसे बड़ी और अहम संस्थाएं रातों रात अस्तित्व में न रहें, तो समाज अपने हिस्से का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान बचा कर ले जाएगा, और वे कौन से विचार होंगे जो उस ज्ञान के नए संस्करण को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे।
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।